أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكلمة الحكمة ظالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، مشہور و معروف حدیث ہے پیغمبر کی کہ کلمہ حکمت، حکمت ضالۃ المؤمن، مومن کی گمشدہ میراث. مومن سے جو چیز گم ہوئی بھی ہے وہ کیا ہے؟ ضالۃ المومن، یعنی حق مومن کا ہے لیکن اس سے گم ہوئی بھی. فحیث وجدہا، پس جب بھی اور جہاں بھی مومن اسے پاتا ہے، فہو احق بہا، وہ اس کا زیادہ مستحق ہے. مومن اگر ہے تو حکمت اس کی گمشدہ شے ہے. اب جس قدر ایمان کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنا حکمت کی طلب انسان کے وجود میں شدید ہوتی جانی چاہیے. دیکھیے، ہمیں جس چیز کی جتنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اتنا اس شے کے گم ہو جانے کے بعد اس کی طلب ہمارے وجود میں شدید ہوتی ہے. آپ نے کہیں ضروری کام سے جانا ہو اور آپ کی گاڑی کی چابی گم ہو جائے، تب ایسے مرحلے میں جتنا کام ضروری ہے اور جتنا اس منزل پر پہنچنے کے لیے گاڑی ضروری ہے، اس ضرورت کے اعتبار سے اس چابی کی طلب اور تلاش آپ کے اندر خود بخود شدید ہو جائے گی. اہمیت موضوع، یعنی چیز کی اہمیت، خود بخود اس کی طلب اور تلاش کو انسان کے وجود میں پیدا کرتا ہے. اگر ہمارے لیے اس منزل پر پہنچنا مہم نہ ہو تو نہ ہمیں گاڑی کی ضرورت ہوگی اور نہ چابی کی. ضرورت کب ہوگی؟ جب ہم اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہوں۔ اگر ہم مقامات ایمانی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، جو وسیلہ درکار ہے ہمیں، اس وسیلے کا نام حکمت ہے۔ حکمت کا باب ایک طولانی باب ہے، بہت ساری گفتگو ہے جو کہ اس میں کی جا سکتی ہے۔ بنیادی سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہے کہ علم اور حکمت کے درمیان کیا فرق ہے؟ علم کسے کہتے ہیں اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ بعض جگہوں پر علم اور حکمت ایک دوسرے کے مترادف سینونیمز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ پر علم اور حکمت ایک معنی نہیں رکھتے۔ یقیناً دو الگ لفظ ہیں جن کے دو الگ معنی ہیں۔ کیا فرق ہے علم اور حکمت میں؟ علم اور حکمت میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ وہ علم جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، فائدے مند ہو، اس علم کو حکمت کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں علم ہوتی ہیں لیکن معلومات کی حد تک ہوتی ہیں۔ اب ہماری معلومات میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ان کا معلوم ہونا ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا۔ علم کا وہ حصہ جو مجھے فائدہ پہنچائے اسے حکمت کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو نہج البلاغہ کے تین حصے کیے جاتے ہیں۔ سید رضی نے جب نہج البلاغہ کو جمع کیا، تین حصے بنائے۔ پہلا حصہ انہوں نے خطبوں میں سے وہ کلمات امیر المومنین کے جو ان کو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل لگے، اس کو انہوں نے جمع کیا۔ دوسرے حصے میں امام کے خطوط میں جو خطوط ان کو ایسے لگے کہ جن میں بلاغی اعتبار سے باقیوں سے فرق تھا، ان کو جمع کیا۔ تیسرا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ حکمتیں۔ کلمات قصار بھی بعض لوگ کہتے ہیں، یعنی چھوٹے جملے بھی کہتے ہیں، لیکن سید رضی نے جو اس کو عنوان دیا وہ کیا ہے؟ حکم، حکمتوں کی جمع۔ اسی طرح سے ایک اور مؤلف نے امیر المومنین کے کلمات کو جمع کیا اور ان کو نام کیا دیا؟ غرر الحکم۔ یہ جو حکم ہے، حکم سے کیا مراد ہے؟ جمع ہے حکمت کی۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت اس جملے کو کہتے ہیں، اس علم کے حصے کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے زندگی میں فائدہ مند ہو۔ اب ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نہج البلاغہ کا پہلا کلمہ قصار یا نہج البلاغہ کی پہلی حکمت، آپ میں سے کوئی ہے جس کو یاد ہو کہ نہج البلاغہ کی پہلی حکمت کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یاد ہے؟ اسی سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا نہج البلاغہ سے رابطہ کتنا ہے۔ دیکھیے، نہج البلاغہ میں سید رضی کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے جو تین حصے کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ امام کے خطبوں کے مطالب ہمارے لیے سنگین ہوں، ہو سکتا ہے امام کے خطوط کے مطالب ہمارے لیے سنگین ہوں، لیکن جو انہوں نے حکمتیں جمع کی ہیں کم از کم وہ ایسی ہیں کہ اگر ہم امام کے وہ چھوٹے چھوٹے جملے، ان سے بھی آشنائی پیدا کر لیں اور انہیں اپنی زندگی میں ہم استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کی کیفیات بدل جائیں گی۔ پہلی حکمت جو نہج البلاغہ میں سید رضی نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کن فی الفتنت کب ابن اللبون، لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب۔ امام فرماتے ہیں کہ زمانے فتنے میں، فتنے کے دور میں، ابن لبون، ابھی بحث ہے عربی میں کہ لبون کسے کہتے ہیں، اونٹ کی کون سی قسم یا کون سی حالت ہے جس کو لبون کہتے ہیں، لبون کا بیٹا۔ امام نے نہیں کہا بنت لبون بلکہ کہا ابن لبون، یعنی جس اونٹ کی امام بات کر رہے ہیں وہ کیسا اونٹ ہے؟ مذکر ہے۔ امام فرما رہے ہیں اس اونٹ کے بچے کی مانند ہو جاؤ لا زہر فیرکب، کہ جس کی پیٹھ ابھی تیار نہیں ہوتی، ابھی اس کی کمر، اس کے جو کوہان ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر سواری کی جا سکے. ولا زرع فیحلب، اور نہ ہی، چونکہ یہ اونٹنی نہیں ہے، اونٹ ہے، اونٹنی نہیں ہے کہ اس کے پستان ہوں اور اس سے دودھ نکالا جائے. کیا فرمانا چاہتے ہیں ان دونوں باتوں سے؟ امام کا مقصد کیا ہے؟ سواری کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کوئی اپنے تحت تسلط نہ لے سکے، اپنے کنٹرول میں نہ لے سکے. زمانے فتنہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان اگر کسی کے کنٹرول میں چلا گیا تو وہ جس نے اسے کنٹرول کیا ہوتا ہے اس کو اپنے مقاصد کے تحت استعمال کرتا ہے. اب زمانے فتنے میں، فتنے کا زمانہ کیا ہے؟ فتنے کا زمانہ جہاں پر حق چھپ جاتا ہے، حق کا ظہور مشکل ہے یا حق کی پہچان مشکل ہے، یہ زمانہ زمانہ فتنہ ہے. اگر اس زمانے میں ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، نتیجہ حق سے دوری ہے. لہذا امام فرماتے ہیں ایسے ہو جاؤ کہ کوئی تمہارے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، تمہیں اپنی مرضی کے مطابق نہ چلا سکے. ولا زرع فیحلب، دودھ دھونے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سوء استفادہ کرنا. زمانے فتنہ بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. زمانے فتنے میں اگر آپ نے ذرا سی بے توجہی کی، کچھ لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے جو اپنی چاپلوسی سے، مکاری سے اور ہوشیاری سے کیا کریں گے؟ آپ کا سوء استفادہ کریں گے. زمانہ فتنہ بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. ابھی اگر میں کوئی بہت، جسے کہتے ہیں کہ تازہ مثال آپ کو دینا چاہوں، تازہ مثال بالکل، میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، نہ اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی اس وقت زندہ مثال اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، چونکہ زمانہ فتنہ خاص طور پر اگر آپ کسی زمانے کو فتنے کا زمانہ کہیں تو ہمارا ہی زمانہ ہے، اور ہم نے اپنے زمانے میں ہی، امام کیا کہہ رہے ہیں، نہ ایسا ہونا ہے کہ کوئی ہمیں اپنے کنٹرول میں لے، اور نہ ایسا ہونا ہے کہ کوئی ہمارا سوء استفادہ کر سکا. ابھی ایک سانحہ، ایک حادثہ تازہ گزرا ہے آپ کے ہاں، سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں آپ نے اس کے حوالے سے گفتگو سنی ہوگی، جس کے نتیجے میں ہمارے کچھ بہت ہی متقی اور پرہیزگار علماء آج کچھ دن ہو گئے ہیں جو زندان میں ہیں. ان میں سے بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے، یعنی مجھ سے بھی اگر کوئی کہے تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے یہ غلطیاں نہیں کی ہوں گی، یہ کرپٹ لوگ نہیں ہیں. مولانا منور علی نقوی صاحب ہیں، محمد علی نقوی صاحب ہیں، میں ان کو اتنے نزدیک سے جانتا ہوں، دونوں اشخاص کو خاص طور پر، کہ اگر مجھ سے کوئی قسم کھا کر یہ کہلوائے کہ تم قسم کھا کر یہ کہو کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، تو میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن زمانہ فتنے میں آپ کی ذرا سی غفلت کیا کرتی ہے؟ ذرا سی غفلت لوگوں کو آپ کا سوء استفادہ. آج کس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں؟ سوء استفادہ. لوگوں نے ان کے اطراف میں آنے کے بعد ان علماء کا سوء استفادہ کیا. کس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں؟ کہ ذرا سا کسی کے اوپر انہوں نے اعتماد زیادہ کیا، اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سوء استفادہ. آج زندان میں. اب امیر المومنین کی یہ حکمت اب آپ تصور کیجئے، آج کے زمانے فتنے میں کس قدر کارآمد ہے ہمارے لیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس زمانے فتنے میں اپنے ایمان کو باقی رکھیں، تو امیر المومنین کی یہ حکمت روزانہ دہرائیں، اور روزانہ کے اعتبار سے اس پر دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے تحت تسلط چلا جاؤں، میرا کنٹرول کسی اور کے ہاتھوں میں، کہیں ایسا نہ ہو میری صلاحیتوں سے، میرے کاموں سے یا میری سادگی سے لوگ کیا کریں؟ سوء استفادہ. دین ہمیں مکاری کا درس نہیں دیتا، دین ہمیں چلاکی نہیں سکھاتا، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ المومن قیسن، مومن زیرک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے. लेकिन इस होशियारी के बावजूद क्या होता है, जरा सा इंसान ने किसी के ऊपर भरोसा ज्यादा किया, जमाने फितने का नतीजा क्या है, उसका सुए इस्तेफादा। अब मैंने एक मिसाल सिर्फ आपको यह समझाने के लिए दी है कि हिकमत किस तरीके से इंसान की जिंदगी में फायदा मंद और नफा बख्श होती। अभी इसी बात के साथ आप ये तसव्वुर कीजिए, नबी क्या कह रहे हैं, मोमिन की गुमशुदा शय क्या है, हिकमत, और हिकमत गुम रह जाए, मैं तलाशी ना करूं और फिर मैं अपने नाम के साथ बड़ा बड़ा लिखाऊं मोमिन, तो मेरे मोमिन कहलवाने या अपने नाम के साथ लिखवाने से मैं मोमिन नहीं बनूंगा। नबी क्या फरमा रहे हैं, मोमिन की गुमशुदा फहैसो वजदहा, जहां पर भी पाता है फहुआ अहक्को बेहा, उसका ज्यादा हक है कि वो उसको ले, उसका ज्यादा हक बनता है कि वो उस हिकमत से ज्यादा इस्तेफादा करे। आज अगर नहजुल बलागा से कोई और इस्तेफादा कर रहा हो और वो जो अपने आप को बड़ी मोटी सी आवाज में जब उनसे कहा जाए मोमिन तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने नहजुल बलागा का एक सफा खसूसन हिकमतों में से कोई एक हिकमत भी पढ़कर याद ना की हो और अपनी जिंदगी में उसको इजरा ना किया हो, क्या वो कहलाने के काबिल हैं कि वो अपने आप को मोमिन कह सकें? अगर मेरे अंदर ईमान है, हिकमत की तलब मेरे वजूद का हिस्सा होना चाहिए। प्यासा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं प्यासा, जो प्यास, जिसको प्यास लगे, प्यास लगने का मतलब क्या है, जो पानी को तलब कर रहा हो, तलब किसे कहते हैं, टैंकी देखकर आगे गुजर जाए, इसे प्यासा कहते हैं। हाँ, गिलास ना मिलने पर क्या, चलो ठीक है बाद में पानी पी लेंगे, ऐसे शख्स को प्यासा नहीं कहना। प्यासा उसे कहते हैं कि जिसकी नजर में अगर टैंकी आ जाए तो फिर उसकी नजर कहीं और नहीं जाती, अगर गिलास मौजूद ना हो तो वो अपने हाथों को चुल्लू बनाकर पानी, अगर प्यासा है, अगर वाकयान प्यासा है। लेकिन जितनी प्यास की कैफियत ज़ईफ़ होती चली जाएगी उतना पानी की तलब खुद ब खुद ज़ईफ़ होती चली जाएगी। अगर मैं नहजुल बलागा का आशिक नहीं बना हूं अभी तक, चले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, खुतबे मेरे लिए मुश्किल होंगे, खतूत मेरे लिए मुश्किल होंगे, लेकिन कलमात क़िसार तो मुश्किल नहीं है, हिकमतें तो मुश्किल नहीं है, एक एक जुमला है। अगर मैं रोजाना भी नहजुल बलागा का एक जुमला पढ़ता हूं, एक जुमला, एक हिकमत पढ़ता हूं मैं, और फिर उसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करता हूं, मुझे बताइए कि कुछ अरसे के बाद मेरा नहजुल बलागा से राबता कैसा होगा। लेकिन कब मैं नहजुल बलागा खोलूंगा, जब मेरे अंदर ईमान मुतहर्रिक होगा, मेरे अंदर ईमान मौजूद होगा। अगर मेरे अंदर हिकमतों को हासिल करने की तड़प और तलब नहीं है तो मुझे अपने ईमान पर दोबारा नजर सानी करने की जरूरत। तो एक मरहला ये हो गया। हिकमत क्या करती है, इंसान की जिंदगी में फायदा पहुंचाती है। बहुत सारे, यकीन कीजिए, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की का वाकया लुत्फ यह है, एक एक जुमला अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिकमत से भरपूर है। अपनी जिंदगी में वाकयान बता रहा हूं, अपनी जिंदगी में मुश्किलात को दूर करने का वाहिद हल अहले बैत का दरवाजा है। हमारी अहले बैत से दूरी है जिसने हमें आज मुश्किलात के दरमियान खड़ा किया। हर दरवाजा हम खटखटाना चाहते हैं लेकिन अहले बैत के पास जाना नहीं चाहते। अहले बैत से हमारा राबता क्या है, हम अहले बैत को हलाले मुश्किलात समझते हैं लेकिन अपने तरीके से समझना चाहते हैं। हलाले मुश्किलात क्या है, बगैर जहमत किए मैं कहूं या अली मदद तो मेरा काम हो जाए। दूसरा स्टेप, अगर ये नहीं, मैं फुला मन्नत मान लूं मेरा फुला काम हो जाए, इससे ज्यादा हम अहले बैत से रब्त नहीं रखना चाहते। रब्त हमारा क्या है, हमने अहले बैत को किस लिए रखा हुआ है, मुश्किलात में पुकारने और मन्नतों के लिए। अहले बैत हमारे हल्लाले मुश्किलात हैं, कब, जब हम उनके दरवाजे पर जाकर अपनी मुश्किल उनको बताकर उनके बताए हुए हल के मुताबिक अपनी जिंदगी को करार दें। आप अपने घर में बैठकर डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रहे, इलाज नहीं होगा। दवाइयों के नुस्खे के पलंदों के पलंदे आपके बिस्तर के नीचे रखे रह जाएं, आप ठीक। अगर आपने इलाज करवाना है, आपको अपने बिस्तर से उठकर डॉक्टर के दरवाजे पर जाना है और जो डॉक्टर ने जिस तरीके से लिख कर दिया है उस पर अमल करेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो जब डॉक्टर इस तरीके से आपको ठीक कर सकता है तो अहले बैत आपकी मुश्किलात को हल नहीं कर सकते। लेकिन अब मुझे बताइए, जब डॉक्टर राजी नहीं है, बल्कि राजी क्या अकल का मसला है, आप डॉक्टर को घर में बैठकर पुकारते रहिए, डॉक्टर के नाम की मन्नतें रख लें, लेकिन डॉक्टर से नुस्खा लेने ना जाएं, नुस्खा ले आए उस नुस्खे पर अमल ना करें। बड़े ज़ौक़ और शौक़ से हम घर में एक आध नहजुल बलागा खरीद के रख लेते हैं, लेकिन रखने के बाद क्या करते हैं, वो रखी रह जाती है। क़ुरान करीम परवरदिगार की जानिब से हमारी मुश्किलात का हल बनकर आया है, शिफा है मोमिनीन के लिए, रहमत है मोमिनीन के लिए। लेकिन कब निकलता है, अगर किसी को बहुत तौफीक हासिल हो जाए तो रमजान में, वरना कब कुरान याद आता है, जब कोई मुसाफिर जा रहा हो लंबे सफर पे। कब याद आता है, जब कोई बीमार हो जाए, हमें समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें, वो कहता है जी किसी ने कह दिया कुरान की हवा, तो इसे कुरान की हवा। कुरान अजीजाने मन हवा देने के लिए नहीं है, मुसाफिरों को नीचे से गुजारने के लिए नहीं है, ताकचों पर रखने के लिए नहीं है। कुरान को अल्लाह ने हमारी जिंदगियों में जारी करने के लिए नाजिल किया है, मुझसे और आपसे कलाम किया है, मुझे और आपको खुदा ने राह हल बताया। लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी मुश्किल सिर्फ खुदा को पुकारने से हल हो जाए। लिहाजा आप इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, एक और हदीस है, पर इत्तेफाकन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हदीस है। इमाम फरमाते हैं कि मा अहदल मरउल मुस्लिम ले अखी है हिदियतन अफवलो मिन कलिमतन हिक्मा। कोई गिफ्ट, कोई हिदिया, कोई गिफ्ट, कोई हिदिया, कोई मोमिन शख्स अपने भाई के लिए इससे बेहतरीन नहीं दे सकता कि वो उसे कोई कलमे हिकमत अता कर रहा है। हमने दीन की सेंस को समझा नहीं है। बाज़ औक़ात, अब तो वो ज़माने ही ख़त्म हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अजीब गरीब बना दिया हमें। एक ज़माने में ईद जब आती थी तो हम एक दूसरे को कार्ड दिया करते थे, एक बड़ा इवेंट हुआ करता था कि जाके कार्ड तलाश किए जाएं, और फिर पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से हम कार्ड तलाश करते थे, फिर उसके अंदर हम सोचते थे कुछ लिख के दिया जाए। मैं हैरान होता हूं, आज हम किसी को कोई कार्ड नहीं देते। आपने किसी को गिफ्ट देना है, उस गिफ्ट के साथ साथ आप एक छोटा सा कार्ड लिखकर उस पर अमीरुल मोमिनीन की कोई एक हिकमत, आइम्मा की कोई एक हिकमत उसके ऊपर लिखकर अपने दोस्त को गिफ्ट कर दें। उसे कहें कि ये जो गिफ्ट नीचे है ये वसीला है, असल गिफ्ट ऊपर है, और मैं ये समझूंगा कि तुमने मेरे हदीये को कबूल कर लिया है सही माना में, अगर तुम कुछ दिनों तक इस हदीस को दोहराते रहो और अपनी जिंदगी में इजरा करते रहो। असल गिफ्ट मेरा ये है। पैगंबर क्या फरमा रहे, कोई मोमिन अपने भाई को कलमाए हिकमत से ज्यादा बेहतरीन हदीया नहीं दे सकता। इस कलमाए हिकमत के बाद क्या फरमा रहे कि इसकी क्वालिटी क्या है, यजीदुल्लाह बेहा हिदा, खुदा के अल्लाह जिसके जरिए से क्या करे उसकी हिदायत में इजाफा करे, और यरुद्द बेहा मिनर रदा, या उसको उसके जरिए से किसी खतरे से किसी नुकसान से अल्लाह ताला बचा ले। बाज औकात हिकमत के जुमले हमें मुश्किलात से बचाते हैं, बाज औकात हिकमत के जुमले हमारे अंदर हिदायत का नूर पैदा करते हैं। हम अपने बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हैं, आजकल गिफ्ट का मेयार क्या है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम घड़ी मोबाइल साइकिल दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं है कि मैं अपने बच्चे को जो पिज्जा दे रहा हूं उससे पहले मैं एक जुमला अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने बच्चे को याद करा दूं? हाँ, छोटी सी प्रैक्टिस है, मैंने डब्बा सामने रख दिया बच्चे के, उसके ऊपर एक कार्ड पर मैंने खूबसूरत अहले बैत की कोई एक हदीस चिपका दी लिखकर, कहा बेटा तुम्हारे लिए हदिया मौजूद है, लेकिन असल हदिया इसके ऊपर है। यह हदिया, असल हदिया यह हदीस है। तुम ये डब्बा खोलने के मजाज हो, उसको खाने के मजाज हो, तुम्हें इख्तियार है, सिर्फ पहले इस हदीस को, दो मिनट लगेंगे, इसको हिफ्ज कर लो और मुझे सुना दो। क्यों हम अपने बच्चों को हिकमत का हदिया नहीं दे सकते? क्यों हम अपने दोस्तों को हिकमत का हदिया नहीं दे सकते? ये जो अब दोस्त ये सारा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आप लोगों की इतनी बड़ी तादाद देखकर मेरा भी दिल खुश हो रहा है, क्योंकि माशाल्लाह पीछे जितने सेशन किए हैं उनमें जो तादाद होती है उसको देखकर और इस तादाद को देखकर बहरहाल कम अज़ कम हौसला ये हो रहा है कि इन दोस्तों का काम ज़ाया नहीं जा रहा। अज़ीज़ाने मन, खुदा के लिए थोड़ी सी तवज्जो करें। आज का जो दौर फितनों का दौर, आज का जो दौर मसाइब का दौर, परेशानियों का दौर, शुबहात का दौर है, इसमें अगर हमने अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं की, कौन करेगा? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तालीमी निजाम जिसकी बिना ही पैसे कमाने पर है वो आपके बच्चों को इल्म और हिकमत अता करेगा? तालीमी निजाम का हाल हमारे यहां ये, आप फीस ना दें वो अगले दिन आपके बच्चे को स्कूल में घुसने नहीं देगा। क्या ये तालीमी निजाम वाकयान आपके बच्चे से मोहब्बत करता है, या आपका बच्चा जब वो देखता है तो उसको जैसे किसी बिजनेसमैन को मुश्तरी दिखाई देता है? जब इन्होंने एडमिशन कराने होते हैं तो इनसे मीठा कोई नहीं होता, और जब इनका कोरम पूरा हो जाता है, कोटा पूरा हो जाता है, हिसाब किताब पूरा हो जाता है, तो इनसे ज्यादा कड़वा कोई नहीं होता, बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह। जब तक उसको प्रॉफिट की लालच है उससे मीठा कोई नहीं है, माल बिक गया अब उससे ज्यादा कड़वा कोई नहीं मिलेगा। अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम से यह तवक्का रखे हुए, इस साथ एजुकेशन सिस्टम किस तरफ जा रहा है, हम तो उस दुनिया में ही नहीं है, इसलिए कि हमारा टीवी मीडिया हमारे लिए हमें सुन करने के इंजेक्शन नहीं है। टीवी इसका काम, मोबाइल इस सब जो है हमारे यहां, खुशफहमी में मत रहे कि इस मुल्क में और इस जमाने में कोई आपका हमदर्द आएगा और आपको आकर निजात दिलाएगा। हम वो हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। हम इस वक्त प्योर जिस जमाने में खुसूसन पाकिस्तान चल रहा है, 100% एक लिबरल और डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट थॉट्स के नीचे, सरमायादाराना तागूती निजाम के तहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अब ये तागूती निजाम क्या करता है, हमें और आपको इंजेक्शन लगाता रहता है, सुन करके रखता है, क्योंकि जब तक हम सुन रहेंगे तब तक वो ताजियाने जो हमारे पुश्त पर पड़ रहे हैं उसका असर हमें महसूस नहीं होगा। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा, ताजियानों की शिद्दत से बिलाखिर हम मर जाएंगे। इसलिए कि ताजियाने का दर्द ना हो एक अलग बहस है, लेकिन वो ताजियाना जो लग रहा होता है इंसान के बदन को नुकसान पहुंचा रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, इंसान को मार देता है। हमें दर्द का एहसास ना हो हम इंजेक्शन लगा देते हैं। अब आप टीवी खोल कर देखिए, आपको कहीं नहीं बताएगा कोई कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, कोई आपको नहीं बता रहा होगा। यहां पे एक छोटा सा मसला होगा जिसकी कोई हैसियत नहीं होगी, उसको टीवी और मीडिया ऐसे दिखा रहा होगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा कमाल हो गया दुनिया में सियासत के एतबार से। वाकई मुझे तो बाद अवकात जब मैं ये देखता हूं टीवी मीडिया, खुसूसन हमारे ये अखबारी अखबार वाले जो चैनल्स हैं, दुनिया के बदतरीन अखबारी चैनल पाकिस्तान के बदतरीन, एक छोटी सी बात, किसी पॉलिटिशियन की बेटी ने अपने कपड़ों पर अब्बा की तस्वीर बना ली है, पूरा दिन उसके कपड़े दिखाते रहेंगे। जिनको हम पॉलिटिशियन समझ रहे हैं, जिनको हम अपने निजात का रास्ता समझ रहे हैं, सारे के सारे चोर डाकू हैं जो हमें और आपको लूटे जा रहे हैं, और हम बड़े सुकून के साथ बैठे हुए हैं कि जी सब सही चल रहा है। क्यों? इसलिए कि हमें ये कोई हमें जगाने वाला नहीं है। इस वक्त जो एजुकेशन निज़ाम है, आपको पता है कि अगले 10 या 20 साल के बाद ये क्या असर दिखाएगा? बड़ी हैरत की बात है। असल में हमारी मुश्किल क्या है, इस ये जो एजुकेशन निज़ाम है ये हमें याद करने या कुछ सीख कर अमल करने की बिना पर रखा ही नहीं गया है। मेरे और मुझसे पहले जमाने के लोग, थोड़ा सा जो मुझसे सीनियर हैं, तब से ये निज़ाम ऐसे चला रहा है, लेकिन जो हमसे सीनियर थे उनका निस्बतन निज़ाम मुख्तलिफ था, उनको जो चीज़ें सिखाई जाती थी उनकी अमली कैफियत भी थी। लिहाजा अब अगर मैं अपने सिनो साल के और अपने से थोड़े से बड़े लोगों से सवाल करूंगा तो उन्हें यही याद नहीं होगा कि उन्होंने पहली से लेकर मैट्रिक तक पढ़ा क्या था। चैलेंज करने के लिए मैं तैयार हूं। मेरी एज ग्रुप के लोगों को यही याद नहीं होगा, पहली क्लास से लेकर दसवीं क्लास तक मैंने क्या पढ़ा, कोई सबक, कोई बात, कोई मॉरल नतीजा ऐसा हो जो आपको किसी सबक से याद रहा हो? कुछ नहीं। अब ऐसे निजाम के अंदर अगर आप यह तवक्का कर रहे हैं कि कोई आकर आपको हिकमत समझाएगा, आपके बच्चों को कोई तरबियत करेगा, यह आपकी भूल है। हमें इस वक्त खुद तवज्जो करने की जरूरत है। और मैं हैरान होता हूं उस आवाम और उस लोगों से कि जिनके पास अहले बैत अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियात मौजूद होने के बावजूद वो ला इल्म, बे इल्म और बेहिकमत रह जाए। क्या वाकयन अहले बैत अलैहिस्सलाम की हैसियत हमारे साथ ये रह गई है? अजीब मसा, वाकयन अजीब मराहिल हैं। देखिए अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र में मोजजात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें खुद अपनी जिंदगी में उन चीजों को इजरा करने नहीं आता। हमने बीबी की कहानी, अब आपको याद, मैं पूरी दास्तान नहीं सुनाना चाहता, एक जमाने में, अच्छा वो अजीब है, हम इफरात और तफरीत के शिकार हैं। इफरात जब करते हैं तो ऐसी कहानी मार्केट में आ गई कि जिस कहानी ने एक अजीब व गरीब सूरत हजरत ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की बना के दे दी। कहानी का एंड क्या हो रहा है, जिसने कहानी नहीं सुनी उसके घर में क्या हो गया, आग लग गई। अब बड़ी अजीब बात है, हमारे बच्चे लाजमात है जब वो सुनते हैं कि हजरत ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के घर को आग लगाई गई तो वो आकर हमसे एक सवाल कलट के पूछते, वो कहते जिसने हजरत ज़ारा के घर को आग लगाई उसके घर को आग लगी नहीं लगी, वो मरा नहीं मरा, उसे कुछ हुआ नहीं हुआ, उसे कुछ नहीं होता कहानी ना सुनने वाले के घर में, तो बड़ा एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो गुनाह के इस लेवल पर बैठे हुए हैं कि हजरत के घर को आग लगा देते हैं, उनको कुछ नहीं होता, और एक लेवल वो है कि जहां पर किसी ने गलती से कहानी नहीं सुनी तो उसके घर को। हजरत ज़ारा खुदा ना खासा ऐसी शख्सियत नहीं है, खुदा की रहमत की तजल्ली का नाम हजरत ज़ारा है। उनसे ज्यादा करीमा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा रहीमा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा रऊफ कोई नहीं है, उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, जब हमने चाहा कि ये थोड़ा सा मसाइल हल हो जाए तो हमने कहानी सुनना सुनाना ही छोड़ दी। मैंने अपने कम से कम बचपनी और जवानी की हद तक ये जरा सा कोई मसला होता था हजरत ज़ारा की कहानी की नियत मान लेते थे, जैसे ही मसला हल होता था बाजार से कुछ टॉफियां खरीदी, कुछ बच्चों को जमा किया, किसी से कहा कहानी पढ़ दो, उसने कहानी पढ़ी, बीबी के नाम की न्याज तकसीम की, बीबी का जिक्र भी हो गया, मुश्किल भी हल हो गई। लेकिन अब हम क्या हो रहा है, जिक्र अहले बैत से दूर होते जा रहे हैं। मॉडर्न जमाने में हमारे पास वक्त ही नहीं है, इसी कि मैं मोबाइल में से बाहर निकलूंगा तो मुझे कुछ चीजें समझ में आएंगी ना, लैपटॉप से बाहर निकलूंगा, इन चीजों से बाहर निकलूंगा तो मुझे समझ में आएगा। जिक्र अहले बैत हल्लाले मुश्किलात है। अब होना यह चाहिए था कि हजरत की कहानी के साथ हजरत की एक हदीस, इमाम के मोजजे के साथ इमाम की एक हदीस, एक जुमला हिकमत। क्या हम इस ट्रेंड के जरिए से अपने बच्चों को और अपने आप को तरबियत नहीं दे सकते? हम रोजाना के हिसाब से मुश्किलात का शिकार हैं। आप माने बिल्कुल मन्नत माने अहले बैत हल्लाले मुश्किलात हैं, लेकिन इस रास्ते को भी तो इख्तियार करके देखें। अहले बैत के दरवाजे तक पहुंचकर अहले बैत से कुछ जुमला लेकर तो आए। इन्हीं जुमलों को मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं, आप आकर देखें तो सही एक मर्तबा अहले बैत किस तरीकों से आप किस अंदाज से आपकी मुश्किलात को हल करेंगे। लेकिन अहले बैत से अपना राबता ईजाद तो करें, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कि रोजाना कोई एक जुमला हम हदीस का मसलन किसी भी गुरर उल हुकम उठा लें, कोई और हदीस की किताब उठा लें, तोहफुल उकूल उठा लें, बेतहाशा किताबें, मिजानुल हिकमा के नाम से किताबें छप गई हैं, कितनी किताबें, कोई एक किताब आप लें और अपनी जिंदगी का रूटीन, माँ का काम क्या हो, बाप का काम क्या हो, कि रात को तय करें हमने अपने बच्चों को कल कौन सी हदीस सिखानी है, एक छोटा सा जुमला, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा जुमला सिखाएंगे अपने बच्चों को। रात को तय करें माँ बाप, सुबह माँ नाश्ता कराते हुए, बाप नाश्ता करते हुए बच्चों को नाश्ते पर रिपीट करा दे, कहो बेटो आज का हदिया तुम्हारे लिए क्या है, अमीरुल मोमिनीन की यह हदीस, और देखो इसका मतलब यह है। दोपहर के खाने पर उसे रिपीट करें, मगरिब के खाने पर उसे रिपीट करें। आपने एक दिन में अपने बच्चे को जो हदिया दे दिया वो कितना कीमती आप सोच सकते हैं, किस कदर आप अहले बैत से अपने बच्चों को नजदीक ले आएंगे आप सोच सकते हैं। अहले बैत जब प्रैक्टिकली मेरी जिंदगी में आकर मेरी मुश्किलात को हल करेंगे तो मेरा अहले बैत के ऊपर जो ईमान होगा वो उससे मुख्तलिफ होगा जो इम्प्रैक्टिकल सूरत में मैं लेता हूं। ये प्रैक्टिकलिटीज हैं, यकीन करें अहले बैत की अहादीस में हमारी हर मुश्किल का हल मौजूद है। इसीलिए काबिले तहसीन है ये सारे दोस्त जो कि इस सिलसिले को किसी ना किसी तरह से जारी किए हुए हैं। वो दौर जो कि टैबलेट मोबाइल्स का दौर आने के बाद अब किताब से और इन तमाम चीज़ों से हमारा रब्ता, हर रोज एक वीडियो ऐसी आएगी जो हमें कुछ देर तक देखनी है और लाजमात इन वीडियोस की तादाद इतनी होगी कि हमारे जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं चीज़ों को देखने में गुजर जाएगा जिससे हमारी जिंदगी के ऊपर कोई पॉजिटिव असर नहीं पड़ता। अब उसमें से एक तालीम और तरबियत के लिए इन्होंने एक बेड़ा उठाया, खुदा इन लोगों की तौफीकात में इजाफा करें और आप तमाम उन मोमिनीन की तौफीकात में इजाफा करें कि जिन्होंने आज के दौर में जरा सी बेदारी का मुजाहरा करके ये चाहा कि आप और आपके बच्चों की तरबियत में कोई मरहला ऐसा हो जो तय हो जाए तरबियत का। कितना छोटा सा काम है। अब ये इन्होंने जहमतें की हैं, इनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। दो तरह की सपोर्ट हैं, कुछ इन्हें माली सपोर्ट्स की जरूरत है, ये चाहते हैं कि इन कामों को इससे बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए। आपसे इनको लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, कभी कभार आपका छोटा छोटा सा हदिया भी एक बड़ा समंदर तैयार कर देता है। दूसरी सपोर्ट ये कि आप इन प्रोग्रामों में हिस्सा लें, जिन अफराद को आप जानते हैं उनको भी शौक दिलाएं कि वो आकर इसमें हिस्सा लें। ये अपने हिस्से का काम ऐसे ही कर सकते हैं कि हर प्रोग्राम के बाद एक छोटा सा तोहफा रख लें, एक छोटा सा गिफ्ट रख लें, इससे ज्यादा नहीं कर सकते ये। लेकिन इनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, अपने लिए आपको जरूरत है। अगर ये उठकर चले जाएं, अपने घरों में जाकर सो जाएं, ये सारा काम करना छोड़ दें तो कोई इनकी जिम्मेदारी तो नहीं है, नुकसान किसे होगा, मुझे और आपको। लिहाजा कम अज कम वो अफराद के जो तालीम और तरबियत के मैदान में किसी उनवान से हमें, हमारी औलादों को, हमारे लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ हिकमतें पहुंचाना चाहते हैं, कुछ अहले बैत से नज़दीक ले जाना चाहते हैं, हमें इनकी मदद की ज़रूरत है और ख़ुद अपनी मदद की ज़रूरत है। हिकमत से मुतालिक एक आखिरी हदीस आपकी खिदमत में बयान करके बहस को और आज की गुफ्तगू को तमाम करूँ। इत्तेफाकन ये हदीस भी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है। फरमाते हैं पैगंबर के इन्नल्लाहा युहयिल कुलूब अल-मैता, परवरदिगार मुर्दा दिलों को जिंदा करता है, किसके जरिए से, बिनूरिल हिकमा, हिकमत के नूर के जरिए से, कमा युहयिल अर्ज़ा बिवाबिल समा, जिस तरह से कि अल्लाह आसमान की बारिश से जमीन को जिंदा करता है। अब कराची वालों से ज़्यादा तो बारिश की अहमियत का अंदाज़ा आजकल किसी को नहीं होगा, हैं, बादल आते हैं, सर से गुजर जाते हैं और हम हसरत से देखते रहते हैं कि शायद अब बरसे कि तब बरसे। महसूस होता है ना जब बादल ऊपर से गुजर जाता है और अगले दिन गर्मी टाइट होती है, तो बड़ा दुख होता है, काश बरस जाता, काश बरस जाता। कयामत के दिन क्या होगा, ऐसे ही बादल आएंगे हमारे सर पर, और कयामत की गर्मी में भी ऐसे गुजरते जाएंगे। तो हम पूछेंगे, हम कहेंगे या अल्लाह ये बादल आ रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर बरस नहीं रहे, इतनी हम गर्मी में खड़े हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से शायद जवाब ये आएगा कि ये दुनिया में वो तमाम फुर्सतें थीं कि जब तुम अहले बैत की हिकमतों के जरिए से अपने लिए बाराने रहमत को और बाराने हिकमत को पैदा कर सकते थे, तुम्हारे पास मौका आता था लेकिन तुम उसको जाने देते थे। तो आज भी तुम कयामत के दिन बादलों की शक्लें देखो, ये नहीं बरसेंगे। कयामत के दिन अगर आप चाहते हैं कि कयामत की गर्मी में बादल आपके ऊपर बरसें, दुनिया में अहले बैत के जरिए से हिकमत की बारान अपने वजूद पर करने की कोशिश करें। मैं अपने वाकन शिया कौम को वाकन शर्मिंदगी होनी चाहिए इस मौके पर, हमें हिकमत की तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक नहीं, 14-14 मासूमीन की शक्ल में अल्लाह ने 14-14 चश्मे हिकमत के जिस परवरदिगार ने जिस कौम के लिए जारी किए हों, और उसके बावजूद वो कौम उस हिकमत से अपने आप को लबरेज न कर सके। कयामत के दिन सबसे ज्यादा शर्मिंदगी हमें होगी, इसलिए कि अल्लाह ने हिकमत के सबसे बड़े चश्मे हमें अता किए और सबसे ज्यादा खाली कौन गया, हम ही गए। एक हम शर्मिंदा होंगे और एक हमारी वजह से अहले बैत शर्मिंदा होंगे। तो खुदा के लिए उस दिन की शर्मिंदगी से अपने आप को बचाने के लिए अपने और अपने बच्चों के कुलूब को जिंदगी अता करने के लिए अहले बैत की जो ये हिकमतें हैं, अहले बैत के जो कलाम हैं, उसके जरिए से उन हिकमतों को हासिल भी करें, अपने और अपने बच्चों को के कुलूब को मुनव्वर भी करें। दुआ करते हैं परवरदिगार के हुजूर में के बारे इलाहा बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। अहले बैत अलैहिस्सलाम से ये जो प्रैक्टिकल राबता है, अहले बैत के दरवाजे पर जाकर हर रोज अहले बैत से कुछ सुनना और उसको सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। बारे इलाहा इन तमाम जितने भी ये मरहले हैं, और अगर हमसे कोई नेकी कोई अमल ऐसा अंजाम पा जाए कि तू हमारी किसी दुआ को मुस्तजाब करना चाहे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बारे इलाहा जहाँ जहाँ दुनिया में मोमिनीन आबाद हैं उन सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, बीमारों को सेहत कामिल आजिल इनायत फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। जहाँ जहाँ मोमिनीन बातिल से बरसरे पैकार हैं, बहरीन में, यमन में, इराक़ में, शाम में, सऊदी अरब में, लुबनान में, नाइजीरिया में, उन सब की नुसरत फरमा, मदद फरमा। फिलिस्तीन, म्यांमार, कश्मीर के मुसलमानों की नुसरत मर फरमा। दीन दुश्मन अहले बैत दुश्मन क़ुव्वतों को, इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों को, इस्तेमारी इस्तिकबारी क़ुव्वतों को नीस्त नाबूद फरमा। तमाम उलमा मराजे इज़ाम की हिफाजत फरमा, बिलखसूस आयतुल्लाह सिस्तानी रहबर मौज़म इनकलाब इनकलाब इस्लामी, हिज़्बुल्लाह हिज़्बुल्लाह की रहबरियत, अंसारुल्लाह अंसारुल्लाह की रहबरियत की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा जितने हमारे बेगुनाह असीर हैं उन सबको जल्द अज जल्द रिहाई इनायत फरमा। इनकी रिहाई के रास्ते में जितने लोग हायल और माने हैं अगर हिदायत के काबिल नहीं हैं, बारे रहमन नीस्त नाबूद फरमा। खुसूसन शेख इब्राहिम ज़कज़ाकी को जल्द अज जल्द रिहाई इनायत फरमा। हम सब को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अरबान अंसार में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।